जयधौला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय पुस्तक द्वितीय अर्थाधिकार जो पैड़ी विभक्ति है, उसमें हम 22 पृष्ठ पर आगे 22। कल हमने देखा था ये मूल प्रकृति विभक्ति है, उसके 8 नियोग द्वार है। 22 पृष्ठ पर लिखा है कि एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर, ये 3 हुए। फिर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, फिर काल अंतर भागा भाग और अल्प बहुत्व। इस प्रकार ये 8 नियोग द्वार है। अब यहाँ नीचे शंका, दूसरी शंका, पहली शंका हमने कल पढ़ी थी। 8 अधिकारों के द्वारा शेष 9 अधिकारों का संग्रह कैसे हो जाता है, तो उसका समाधान इस प्रकार है। समुत्कीर्तना नामक अधिकार को तो पृथक नहीं कहना चाहिए। समुत्कीर्तना में क्या बताया जाता है, उसकी सत्ता अस्तित्व बताया जाता है, जिसको सत प्ररूपणा भी कहते हैं। तो जब बाकी बात होगी कि स्वामित्व अंतर कहेंगे तो उसका अर्थ होता है वो है, इसीलिए तो बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं समुत्कीर्तना नामक अधिकार को तो पृथक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सत्व के बिना, सत्व यानी सत्ता के बिना 8 अधिकारों का अस्तित्व मानने में विरोध आता है। सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव ये 4 अर्थाधिकार भी पृथक नहीं कहने चाहिए। यदि हम पृथक कहते तो इसी में उसके समाविष्ट कैसे हो जाते, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि काल और अंतर अधिकार के द्वारा ही सादि आदि अधिकारों के विषय का ज्ञान हो जाता है। जब काल और अंतर देखते हैं तो कौन से सादि है, कौन से नहीं है, अनादि है, उसकी बात हमें ख्याल में आ जाती है। परिमाण अधिकार भी पृथक नहीं कहना चाहिए, परिमाण यानी उसका जो प्रमाण बताया जाता है, क्योंकि परिमाण अधिकार का अल्प बहुत्व अधिकार में अंतर्भाव हो जाता है। यानी कौन से कम है, कौन से ज्यादा है, उसमें तो उसका प्रमाण भी ख्याल में आ जाता है। समुत्कीर्तन यानी सत प्ररूपणा, हाँ, वो है ऐसा बताना। भावाधिकार भी पृथक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बिना कहे ही उसका अस्तित्व जाना जाता है। क्योंकि यानी यहाँ भावाधिकार में किसको लिया था, याद है हमने, हाँ भाव, यहाँ तो औदयिक भाव है ना मोहनीय का। क्योंकि जो जीव मोहनीय कर्म के उदय से रहित है उनके प्राय ने वो तो लगभग, यानी ये तो जनरल स्टेटमेंट है, स्थूल कथन है। मूल प्रकृति मोहनीय का सत्व नहीं पाया जाता, इसमें कोई प्राय क्यों कहा, सर्वथा क्यों नहीं कहा, क्या कहा है, जो जीव मोहनीय कर्म के उदय से रहित है उनके प्राय लगभग, हाँ ऐसा क्यों कहा, प्रेरणा बेन बोलो, अरे ये तो सबको मालूम है चीज। हाँ मयंक भाई, जिसको मोहनीय का उदय नहीं है ऐसे कौन से गुणस्थान है, 12, 13, 14 को सत्व नहीं है, यहाँ तो उदय नहीं है परंतु सत्व है, ऐसा कौन सा गुणस्थान है, 11 है ना, वही बात बता रहे हैं। क्या कहते फिर पढ़े प्रश्न क्या है, स्टेटमेंट क्या है, जिसको मुकर मोहिनी कर्म का उदय नहीं है यानी जो रहित है उन्हें प्रायः मूल प्रकृति मोहिनी का सत्व नहीं पाया जाता। जिसका उदय भी नहीं है और सत्व भी नहीं है प्रायः यानी वो 12, 13, 14 की बात है। परंतु प्रायः शब्द डालने का क्या प्रयोजन था कि कहीं तो पाया भी जाता है तो ऐसा कौन सा है तो 11वें में पाया जाता है। तो उदय से रहित है परंतु सत्व है। क्षेत्र और स्पर्शन अधिकार भी नहीं कहने चाहिए क्योंकि उपदेश के बिना ही क्षेत्र और स्पर्शन का ज्ञान हो जाता है। यानी कैसे ज्ञान हो जाता है, कौन से जीव में है, तो वो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी बात ख्याल में आ जाती है। अथवा अल्प बहुत्व के साधन करने के लिए द्रव्य का परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पर्शन का ज्ञान हो जाता है। कितने जीवों में वो मोहिनी आदि बात हम पढ़ते हैं, कौन से जीवों में है, तो उसका भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। यानी इतने अनुयोग द्वारा अलग अलग बनाए और नहीं भी बनाए, फिर भी उसमें पूरा ही विषय वहाँ आ जाता है उसके अंदर। इसलिए अधिक अधिकारों के द्वारा उसका कथन करे या नहीं न भी करे, फिर भी उस विषय का ज्ञान हो जाता है। समुत्कीर्तना वगैरह ये जो हमने पहले देखे थे ना, उसमें तो हाँ उसमें तो सत प्ररूपणा भी आ जाती है। तो 17 हमने जो देखे थे समुत्कीर्तना से उन्होंने शुरू किए थे, उसमें से द्रव्य क्षेत्र सब ले लिए थे, पहले दिन हमने पढ़े थे। ये अभी जो हमने देखे ना द्रव्य क्षेत्र काल अंतर सब प्रस्तावना में पड़े थे। अच्छा, मूल प्रकृति विभक्ति उसमें वो सादी अनादि ध्रुव अध्रुव पहला समुत्कीर्तना लिया। देखो मूल प्रकृति विभक्ति जहाँ लिखा है 9 पेज पर प्रस्तावना के, उनमें पहली लाइन क्या लिखे, मूल प्रकृति विभक्ति का वर्णन करने के लिए आचार्य यति ऋषभ ने 8 नियोग द्वार रखे हैं। कौन से, वो अभी हमने देखे। और चूर्णी वो जो दूसरे है ना उच्चारणा वालों ने, उच्चारणाचार्य ने 17 बताए। ये कौन से 17 है, तो यहाँ लिखा है देखो, समुत्कीर्तना, सादि अनादि ध्रुव अध्रुव, स्वामित्व काल अंतर, तो दोनों रिपीटेड है, भंग विचय वो भी रिपीटेड है, भागानुभाग को यहाँ अलग बताया, वहां केवल अल्पभूतव ले लिया था, परिमाण अलग बताया, क्षेत्र स्पर्शन बताया, वहां तो केवल काल अंतर भाव और अल्पभूतव लिया था। हाँ, तो सत प्ररूपणा में सत समुत्कीर्तन भी आ जाता है। यानी कहीं नहीं भी लेते हैं तो भी वो है ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व है तभी तो आगे की बातें बताएंगे। यानी उसको अलग से बताए तो भी अच्छा ही है, नहीं बताए तो भी वो है गर्भित, ये समझ में आता है। कितने भी अभी संख्या कितनी भी ले लिए, हाँ नहीं नहीं देखो कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहाँ तो अलग सादी अनादि ध्रुव अध्रुव अलग से बताए, ये तो काल और अंतर से समझ में आता है। और इन्होंने अधिक उच्चारणाचार्य की यही तो पद्धति है ना इनकी, कि अधिक से अधिक उसको स्पष्ट करके बताए, इसलिए उसके अधिकार ही अलग बताए। ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं भी थी, यानी बताते हैं तो भी विषय से कोई हटकर कुछ नहीं बता रहे, विषय में से ही निकाल के बता रहे। तो कहीं 8 भी कहो, 11 भी कहो या 15 भी कहो, विषय तो पूरा उसमें समा जाता है। 8 में भी विषय आ जाता है और 15 में भी वही विषय आता है। उन्होंने कुछ अधिक विषय बताया ये भी बात नहीं है। तो ये किस तरह से दोनों सेम है, समान है, उसकी बात अभी यहाँ वीरसेन आचार्य समझा रहे हैं। अब हम आगे का सूत्र पढ़ते हैं 23 नंबर के पृष्ठ पर। एदेशु अनुयोगद्दारेशु परुविदेशु मूल पयड़ी विहत्ति समत्ता होदी। इन 8 अनुयोग द्वारों का कथन कर चुकने पर उनके नाम बताए ना अभी। मूल प्रकृति विभक्ति नाम का पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है। उन्होंने वो तो नाम बता दिए, बस वो पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता कहते हैं। तो कहते हैं सुगम होने से यति ऋषभ आचार्य ने इन आठों अर्थाधिकारों का विवरण नहीं किया है। उन्होंने तो बता दिए इतने, तो इसमें से जान जाएंगे शिष्य, क्योंकि तब के शिष्य तो जानकार थे ना। तो अभी उच्चारणाचार्य क्या कहते हैं देखो, अब मंद बुद्धि जनों का उपकार करने के लिए उच्चारणाचार्य के मुख से निकले हुए मूल प्रकृति के विवरण को कहते, विवरण ने उसका विस्तार से वर्णन व्याख्यान वह इस प्रकार है। यानी उन्होंने तो आठ अनुयोग द्वारों के नाम बता दिए और मूल प्रकृति अधिकार उनका समाप्त हुआ। किसका? चूर्णी सूत्रकार का, यति ऋषभ आचार्य। उच्चारणाचार्य उस जान गए कि इतना कहने से आगे शिष्य मंद बुद्धि शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसके ये 15 करके उन्होंने हर एक का अलग अलग विस्तार से वर्णन बता दिया। वह इस प्रकार है समुत्कीर्तना, सादी विभक्ति, अनादि विभक्ति, ये उन्होंने एक ही हेडिंग में उसको सबको दिया था ना। ध्रुव विभक्ति, अध्रुव विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, फिर काल, काल भी एक जीव की अपेक्षा, अंतर तथा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागा भाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत, यह 17 हो गए ना। 17 हो गए। हाँ, इसमें से अभी हरेक की बात बताएंगे। समुत्कीर्तन है वो है ऐसा बता देना। समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, निर्देश का अर्थ होता है कथन, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ का अर्थ क्या है? हाँ भानु बहन मालूम है, अभी हमने देखा था देवलाली में। हाँ, सामान्य को ओघ कहते हैं और विशेष को आदेश कहते हैं। ओघ यानी सामान्य कथन एक होता है और उसमें मार्गणाओं के भेद करके मार्गणाओं में जो बताएंगे उसको कहेंगे आदेश। तो ओघ निर्देश यानी सामान्य कथन और आदेश निर्देश यानी विशेष, मार्गणाओं में, मार्गणाओं की जैसे गतियों में उसके क्या विशेषता है उसको बताएंगे। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले और मोहनीय अविभक्ति वाले जीव है बताना इसका प्रयोजन है। समुत्कीर्तना में है इतना ही बताएंगे। इसी प्रकार ये अविभक्ति वाले है ने क्या, वो सत्ता वाले की बात है ना, वो सत्ता वाले है और नहीं भी है। इसी प्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेंद्रिय सामान्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, अपगत वेदी, अकषायी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, संयत, यथाख्यात संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेशा वाले, भव्य, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, संगी, आहारक, अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। अर्थात इन जीवों के मोहनीय कर्म पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता। अभी हम पहले से फिर लिस्ट देखेंगे जिनमें मोहनीय का सत्व पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। तो नहीं मोहनीय का कहाँ पाया जाता है? तो सब में पाया जाता है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चारों गतियों में पाया जाता, और नहीं भी पाया जाता ऐसा कहाँ हो सकता है? तो जिनमें पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता ऐसे एक ही गति है। कौन सी? मनुष्य। नहीं पाया जाता ऐसे कहाँ होता है बेन? सत्व, सत्ता। मोहनीय कर्म है ही नहीं ऐसा कब होता है? हाँ, 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में। इसलिए यहाँ क्या कहा, पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता, ऐसे दोनों ही पॉसिबिलिटीज, दोनों ही विकल्प जहां जहां है जिस मार्गणा में उसको कहेंगे। अन्य तीन गति में ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो पाया जाता ऐसा ही कहना पड़ेगा। नहीं पाया जाता वाला विकल्प वहां नहीं है, दोनों ही घटित होने चाहिए। तो यहाँ अभी हम फिर लिस्ट देखेंगे। मनुष्य सामान्य लिया, सामान्य ने वह सभी, अभी यहाँ किसको नहीं लिया, मनुष्यों के चार प्रकार हमने देखे थे। हाँ, लब्ध्य पर्याप्त वाले मनुष्य को छोड़कर बाकी सब लिए। हाँ, अभी उसके बाद जब आएगी तब हम कहेंगे, पहले हम लिस्ट देखेंगे। सामान्य मनुष्य, फिर मनुष्य पर्याप्त लिए। अपर्याप्त मनुष्यों में तो नहीं होता, पर्याप्त भले वो तीनों वेद वालों में से कोई भी हो, भाव वेद की अपेक्षा आती है ना। मनुष्यनी यानी भाव स्त्री की बात है, द्रव्य स्त्री की बात नहीं है यहाँ पर। पंचेंद्रिय सामान्य, पंचेंद्रिय सामान्य कहेंगे तो मनुष्य आता ही है, तो उस अपेक्षा से वहां विघटित होता है। पंचेंद्रिय पर्याप्त, यहां भी मनुष्यों को ही लेना है। त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी। है भी और नहीं भी है। नहीं भी है में बारवा गुण स्थान लेना कि नहीं लेना है ना, चारों है। तेरवे में नहीं है दो, तो पांचों वचन योगी का योगी लिए। पांच जो सामान्य है ना, जिसमें कोई सभी भेद जिसमें गर्भित है, ऐसे सामान्य मनोयोग कहेंगे उसको। एक वो भेद हुआ, फिर सत्य असत्य उभय अनुभय, ये चार, ऐसे पांच होते हैं। अब काय योगी, फिर औदारिक काय योगी। देखो अन्य को नहीं लिया है, औदारिक मिश्र काय योगी। ऐसा क्यों लिया? अकेला समुदाय यानी है भी और नहीं भी है, जहां मोहनीय है तो अन्य सभी ले लो औदारिक। हाँ, और नहीं भी है में समुद्घात केवली, कब कौन सा समुद्घात? नहीं, औदारिक मिश्र। हाँ, कपाट, कपाट में औदारिक मिश्र है। हाँ, तो वहां तो नहीं है। और अन्य औदारिक मिश्र कहाँ पाए जाते हैं? अपर्याप्त अवस्था में है, वहां तो मोहिनी की सत्ता है। कार्मण का योगी, अब कार्मण का औदारिक मिश्र कहाँ है? कपाट में है एक समय के लिए। और अन्यत्र कहाँ है औदारिक मिश्र? सारे जो औदारिक शरीर वाले आगे अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले तक। हाँ, तो कपाट ही कहेंगे ना उसको। हाँ, यहाँ अंतर की क्या, काल की बात नहीं चल रही है। औदारिक मिश्र जो है कहाँ कहाँ होते हैं? तो औदारिक मिश्र वालों में मोहिनी की सत्ता होती भी है नहीं भी होती, इतना ही लेना है हमको। तो नहीं होती वाले औदारिक मिश्र कौन है? कपाट वाले। और होती है वाले कौन? वो जो सर है अपर्याप्त अवस्था में, लब्धि अपर्याप्त हो या निवृत्ति अपर्याप्त हो, उसकी बात है। छठा नहीं लेना औदारिक मिश्र में, वो आहारक में चला जाएगा। आहारक में हम नहीं लगा सकते ये बात, क्योंकि आहारक के साथ नहीं भी है वाला विकल्प नहीं हो सकेगा। ख्याल आता है? ऐसी मार्गणा लेनी जहां है भी और नहीं भी है दोनों लागू होने चाहिए। आगे कौन सा लिया? कार्मण का योगी। कार्मण का योग में है भी और नहीं भी है, तो है भी कब होगा? विग्रह गति में। और नहीं भी है कब होगा? कौन? हाँ, प्रतर लोक पूरण में। हाँ, तीन समय के लिए। अपगत वेदी, अपगत वेदी में मोहनीय की सत्ता है, ऐसा कब होगा? नवे का पहले का पाठ छोड़कर नवे का उर्वरित भाग, दसवा और ग्यारहवा भी लेंगे, क्योंकि सत्व है वाला लेना है, सत्ता है वाला जीव लेना है। और नहीं भी है ऐसे अपगत वेदी वाले कौन है? बारवा, तेरवा, चौदवा। किस तरह से विचार करना है ये एक बात हमें ख्याल आया ना, चाबी मिल गई तो आसान है। अकषायी, अब अकषायी में सत्व है और नहीं भी है, है कौन सा लेना? अब ग्यारहवा। और नहीं है में बारहवा, तेरहवा, चौदहवा। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, इनमें है भी और नहीं भी है, बोलो अभी। ग्यारहवें में है, बारहवें में नहीं है, मति ज्ञान सहित बारहवा है ना। क्योंकि ये छद्मस्थ के है ज्ञान, तो छद्मस्थ में है भी और नहीं भी है, घटित होता है। तो ग्यारहवें में तो सत्ता है, बारहवें में नहीं है। संयतों में, हाँ, संयत कहां से कहां तक होते हैं? 6 से 14 तक। हाँ, तो कहां तक सत्ता है? 6 से 11 तक सत्ता है, और 12 से आगे नहीं है। यथाख्यात संयत में अभी हाँ 11 में सत्ता है, 12, 13, 14 में नहीं है। चक्षुदर्शनी जीव 12 तक चक्षुदर्शनी है ना, अचक्षुदर्शनी में भी ऐसा ही समझना। तो 12 तक चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन है, 11 में तो उन जीवों में सत्ता है मोनिय की, और 12 वाले को नहीं है। अवधि दर्शनी में भी ऐसा ही घटित करना है, 11, 12। अब शुक्ल लेशा वाले में सत्ता है मोहनीय की। हाँ बोल, 7वें से आप क्या कहते हैं लक्ष्मीबेन? सभी मैंने कहा, कहां से कहां तक? 1 से कहां तक? 1 से नहीं, हाँ। मयंक भाई, हाँ बहुत अच्छा। शुक्ललेशा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 13 तक शुक्ललेशा होती है, उसमें से पहला गुणस्थान लेना, आप एक ही सोच रहे। हाँ तो पहले से 11 तक शुक्ललेशा के साथ मोहनी की सत्ता है। हमारा क्राइटेरिया शुक्ललेशा वाला है, तो शुक्ललेशा के गुणस्थान कौन से? 1 से 13 तक, तो उसमें से 1 से 11 तक तो सत्ता है मोहनी की। 12वें 13वें वाले शुक्ल लेशा होते हुए भी उनके मोहनी की सत्ता नहीं है। नहीं समझे? 14वें में अयोगी है ना, वो तो लेशा नहीं है वहां पर। हाँ 12वां और 13वां शुक्ल लेशा है, परंतु मोहनी की सत्ता नहीं है। अब भव्य जीव, हाँ 1 से 11 तक भव्य होते हुए मोहनी की सत्ता है, और 12वां वाला और कहां तक लेना भव्य? 14 तक, 14 तक भव्य, भव्य ने होने योग्य, सिद्ध हो चुके, सिद्धों में तो नहीं लगेंगे अभी भव्य। कौन सा? हाँ है भी और नहीं भी होते ना भव्यों में। है भी कहां तक है? तो पहले से 11वें तक सत्ता है मोहनी की। भव्यत्व कहाँ है? वो नहीं, भव्य जीवों में मोहनी की सत्ता कहाँ कहाँ है? तो पहले से 11वें तक, और 12वें 13वें 14वें वाले को भव्य है परंतु सत्ता नहीं है। सम्यक दृष्टि, हाँ 4 से 11 सत्ता है, और फिर हाँ आगे सत्ता नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि, हाँ ये भी ऐसे घटित होगा। संगी जीव, हाँ संगी जीवों में पहले गुणस्थान से 1 से 11 तक सत्ता है, और संगी में आगे के कौन से गुणस्थान लेना? हाँ 12 ही है, क्योंकि संगी मार्गणा की बात, ये संगी है। ये जो संगी पंचेंद्रिय वाला है वो पहले हो चुका, पंचेंद्रिय पर्याप्त सामान्य वगैरह। यहाँ जो संगी मार्गणा में है, 13वें 14वें वाले को संगी असंगी से रहित मार्गणा की अपेक्षा। जीव समास जब लगाते हैं तब उसमें तो अरिहंत कौन है? तो संगी पंचेंद्रिय है, परंतु संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी और असंगी ऐसे दो भेद होते हैं, और 13वें 14वें वाले संगी असंगी से रहित है, क्योंकि मन के द्वारा जानने का कार्य नहीं चलता है। आहारक और अनाहारक, आहारक है, अभी प्रश्न सुनो, जीव आहारक है और सत्ता है, और आहारक होते हुए सत्ता नहीं भी है। हाँ बोलो जयबेन, आप कहेंगे जरा विचार करने दो। हाँ आहारक, आहारक किसको कहना? हाँ नो कर्म आहार चलता है उसको आहारक कहेंगे। तो आहारक कब होता है, अनाहारक कब होता है, अनाहारक कब कब होता है उसको बताओ पहले। विग्रह गति में अनाहारक जब कारमान का योग होता है, और कहाँ होता है अनाहारक? 13वें गुणस्थान में केवली कौन सा प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर तीन समय के लिए अनाहरक है। और अनाहरक कब है मयंक भाई जीव अनाहरक और कौन से गुणस्थान में है 14वें में। हाँ अब इनमें ये अनाहरक की बात हुई, आहारक कौन है इनके अलावा बाकी सब आहारक है। तो आहारक भी है उसमें सत्ता वाले और बिना सत्ता वाले लेना है। 11वें तक तो आहारक पर्याप्त जीव है ना जो सो कोई है, तो 11वें तक तो आहारक होते हुए भी मोनी की सत्ता है, आहारक है मोनी की सत्ता भी है, और आहारक होते हुए सत्ता नहीं है मोहिनी की सत्ता नहीं है, ऐसे कौन से जीव है 12वां है 13वां है। 14वें की तो आहारक नहीं है ना, वो अनाहारक है। हाँ समुद्र को छोड़कर अब अनाहारक जीवों में लगाना है। अनाहारकों में सत्ता है, सारे विग्रह गति वाले समझना, हाँ उनमें तो सत्ता है। अनाहारकों में गुणस्थान कौन से हो गए सत्ता वाले गुणस्थान 1, 2 और 4 अनाहारक होते हुए मोनी की सत्ता, और अनाहारक होते हुए मोनी की सत्ता नहीं है 13वें में कौन सा तीन समय केवली समुदात में और 14वां। इस तरह से विचार करना है। हमने तो पहले खाली लिस्ट पढ़ ली तो इन जीवों के आगे के पृष्ठ पर मोहनी कर्म पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है, हर एक मार्गणा में उन्होंने घटित कर दिया। नरक गति से लेकर असंगी तक शेष समस्त मार्गणाओं में मोहनीय विभक्ति वाले जीव है, मोहनीय विभक्ति से रहित जीव नहीं है। अभी शेष में हम फिर उस लिस्ट पर आते हैं, मार्गणा देखना है। नरक गति आदि में मनुष्य गति छोड़कर अन्य तीन गति को लेना है। 6 से 11वें तक संयत होते हुए मोहनी की सत्ता है, 12वां 13वां 14वां संयत तो है परंतु मोहनी की सत्ता नहीं है। अब यहाँ कहते मोहनी की विभक्ति वाले ही है अविभक्ति वाले नहीं है, ऐसी कौन कौन सी मार्गणाएं हैं अब हम फिर लिस्ट को देखेंगे। पहले में पहले गति लेना, कौन से गति वालों में अभी विभक्ति वाले ही है, बिना विभक्ति वाला ऑप्शन नहीं है। मार्गणाओं के 14 मार्गणाओं के नाम देखने जा रहे हैं अभी हम फिर दोबारा। तो नरक गति तिरंच गति और देव गति में सभी वो विभक्ति वाले ही है, मोहनी की विभक्ति वाले है, मोहनी नहीं है सत्ता में, ऐसा कोई जीव उन गतियों में नहीं है। ये आसान है ना, मनुष्य गति में पॉसिबल है क्योंकि मनुष्यों में ही वो सारे 14 गुणस्थान होते हैं। अब गति के बाद इंद्रिय, हाँ तो एक इंद्रिय, हाँ पंचेंद्रिय में है कहा था हमने, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय में तो सत्ता वाले ही है, बिना सत्ता वाले नहीं है। गति इंद्रिय काय, काय वालों में अभी देखना है, काय वालों में भेद कितने होते हैं 6 काय, 5 स्थावर और 1 त्रस, तो 5 स्थावर कायों में तो सत्ता विभक्ति वाले ही है, मोहनी की विभक्ति वाले है ने सत्ता वाले जीव है। वो त्रस में ही हमने देखा था कि षटकाय में 5 स्थावर और बाकी सारे त्रस, त्रस काय में तो मनुष्य आते हैं, तो उसमें तो दोनों ही पॉसिबल है। अब त्रस्काय में अपर्याप्त जीव जो है वे सत्ता वाले ही है, त्रस में और विभाजन करेंगे तो, इसलिए त्रस पर्याप्तों को यहां रखा था और त्रस अपर्याप्तों को निकाला था। अब गति इंद्रिय काय, फिर योग, योग वालों में लेना भी, तो ऐसे कौन से योग है कि जिनमें सत्ता ही है बिना, यहां हमने पांचों वनयोग वचन योग लिए थे, कारमान का योग भी लिया था, औदारिक भी लिया था, औदारिक मिश्र भी लिया था, अब कौन से रह गए वैक्रेक, वैक्रेक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, ये रह गए ना, तो इनके क्योंकि जिनके आहारक है उनके तो मोनी की सत्ता है ही, और जो वैक्रेक वाले हैं उनके भी है ही, बिना सत्ता वाला कोई नहीं है। तो गति इंद्रिय काय योग वेद, वेदों में जो वेद वाले है वहां, हाँ उनमें सत्ता है ही, आहारक, आहारक, आहारक मिश्र, चार हो गए योग में। वेदों में जहां वेद है वहां तो सत्ता है ही, अवगत वेदियों में ही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। गति इंद्रिय का योग वेद कषाय, कषाय जहाँ है वहाँ तो है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, जहाँ कषाय वहाँ है। अब ज्ञान में लगाना है, ऐसे कौन सा ज्ञान है वो को है भी नहीं भी नहीं, हमको नहीं वाला ये जहाँ सत्ता है ही, ऐसे ही ऑप्शन चाहिए। कुमति कुश्रुता और कुअवधि, हाँ कुमति कुश्रुता और कुअवधनी, और वो तो केवल हाँ मति और श्रुत कौन से कु, सु में तो दोनों लगते ग्यारहवा बारह गुणस्थान, बारहवें गुणस्थान वाले को मति श्रुत ज्ञान होते हुए भी सु होते हुए, हाँ तो हमें यहाँ तो कु वाले ही लेने पड़ेंगे। केवल ज्ञान को लेंगे तो वो सारे अविभक्ति वाले उनमें मोहनी वाले नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे उनमें, तो एक ही ऑप्शन होगा नहीं वाले होंगे, उसको नहीं ले सकते हम यहाँ पर। योग वेद कषाय ज्ञान, फिर संयम, कौन सा संयम है, संयम मार्गणा की अपेक्षा भेद कितने संयमों, हाँ असंयमी में तो है और संयमा संयमी में भी है। अब जो पांच प्रकार के संयम है ना, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि है ही क्या, नहीं भी है, हाँ नौवे गुणस्थान तक है तो है ही, हाँ सूक्ष्म सांप्राय में भी है, हाँ परिहार में भी है, यथाख्यात में होगा है भी और नहीं भी है, ये यहाँ लिया था यथाख्यात को, तो उसको छोड़कर बाकी सभी में है ही वाला ऑप्शन है। दर्शन में हाँ, और अवधि दर्शन में वो भी है भी, यानी दर्शन वाला यहाँ ले ही नहीं सकते कोई, ऐसा कोई नहीं कि जहाँ है ही अकेला, ऐसा नहीं हो सकता। अबलेशा जहाँ सत्ता है ही, ऐसी लेशा है ही, हाँ तीन 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 अशुभ में तो है ही है, और पीत और पद्म में भी है ही, एक शुक्ल में ही ऐसे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अभव्य में है अभव्य, भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्य में दोनों ऑप्शन है, अभव्य में तो है ही। अब इस सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा पहले तीन जो है मिथ्यात्व सासादन और मिश्र, उनमें तो सत्ता है ही, अब उपशम में है ही, वेदक में भी है ही, क्षायिक में ही दो ऑप्शन हो सकते हैं, संगी और असंगी में, असंगी में तो है ही, आहार कनहार के यहाँ दोनों लिए थे, यानी दोनों में ही दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, इस तरह से हमने अब यहाँ देखा 23-24 पृष्ठ पर। तो अन्य जो अभी हमने देखे ना, वे तो मोहनी की विभक्ति से रहित उसमें नहीं है, अभी हमने लगा के देखा था विशेषार्थ। समुत्कीर्तना सुमुत हुआ, समुत्कीर्तना शब्द का अर्थ उच्चारणा है, उच्चारणा है वो है ऐसा बताना है। इसमें विवक्षित धर्म की अपेक्षा सामान्य और विशेष रूप से जीवों का अस्तित्व और नास्तित्व, या सामान्य और विशेष रूप से जीवों में विवक्षित धर्म का अस्तित्व और नास्तित्व बतलाया जाता है। यहाँ तो मोहनी की सत्ता है कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ऊपर मोहनी कर्म की अपेक्षा कथन किया है सामान्य से, सामान्य कथन क्या होगा, मोहनी कर्म से युक्त जीव है भी और नहीं भी है, ये सामान्य कथन होगा। तो सामान्य से मोहनी कर्म से युक्त और उससे रहित जीव है यह निर्देश, इतना कथन किया, ये सामान्य कथन हुआ, ओघ हुआ। और आदेश यानी अभी जो हमने प्रत्येक मार्गणा में लगाया वो है विशेष, क्योंकि उपशांत मोह गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्म से युक्त होते हैं, और क्षीण कषाय गुणस्थान से लेकर सभी जीव उससे रहित होते हैं, ये तो सामान्य कथन हुआ। गुणस्थानों में लगा लिया, गुणस्थानों में बता दिया यहाँ तक है और यहाँ से नहीं है। अब मार्गणाओं की बात करेंगे। तथा जिन मार्गणा स्थानों में ये दोनों प्रकार की अवस्थाएं संभव है उनकी प्ररूपणा को ओग के समान कहा है। क्या कहते हैं? ओग के समान उसमें है भी और नहीं भी। ओग में क्या कथन किया था कि जीव ऐसे है भी और नहीं भी है, तो जिनमें ये दोनों विकल्प संभव है उनमें कहा ये ओग के समान है। ओग के समान क्या? ओग के समान है भी और नहीं है, ये समानता पाई जाती है। ऐसी मार्गणाओं के नाम ऊपर ही गिना दिए हैं। और जिन नरक गति आदि मार्गणाओं में क्षीण कषाय आदि गुणस्थान नहीं पाए जाते उनमें मोहनीय का अस्तित्व ही कहा है। ये जो हमने सभी मार्गणाओं पर घटित किया, इस प्रकार समुत्कीर्तना प्ररूपणा समाप्त हुई। देखो इसका तो नाम भी नहीं लिया यति ऋषभाचार्य ने, फिर भी यहाँ है वाली प्ररूपणा करके किस में कौन मार्गणाओं में कैसे घटित होता है ये उच्चारणाचार्य ने करके दिखाया। अब आगे सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा, ये सबको एक साथ ले लिया उन्होंने। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या पूछा? ये सामान्य कथन के कि मोहनीय वो मोहनीय की सत्ता सादी है क्या अनादि है, ध्रुव है क्या अध्रुव है, चार विकल्प पूछे उन्होंने, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। तो कहते हैं उसका उत्तर देते हैं, मोहनीय विभक्ति अनादि ध्रुव और कर्म का समूल नाश कर दिया है ऐसे क्षीण कषाय जीव के फिर से मोहनीय कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। तो है तो अनादि की और फिर उन्होंने नाश कर दिया है। इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों के ध्रुवपद नहीं है। यदि कहा जाए जो भव्य जीव नित्य निगोदिया है उनमें ध्रुवपद देखा जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके भी मोहनीय के नाश करने की शक्ति पाई जाती है। यदि उनके मोहनीय के नाश करने की शक्ति न मानी जाए तो वे भव्य न होकर अभव्यों के समान हो जाएंगे। मत्य ज्ञानी किसको कहते हैं? मति अज्ञानी यानी कुमति वाले, उसको मत्य ज्ञानी कहते हैं। श्रुत ज्ञानी, श्रुता चाहिए ना यहाँ पर, सुधा अन्नानी का है ऊपर, यानी श्रुत नहीं श्रुता चाहिए, श्रुता ज्ञानी यानी श्रुत अज्ञानी। असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवों के मोहनीय विभक्ति क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है। उक्त मार्गणाओं में मोह विभक्ति सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों रूप है। अभव्य जीवों के मोह विभक्ति क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है। अभव्य जीवों के मोह विभक्ति अनादि और ध्रुव है। ये विशेषात हम देखेंगे। अपगत वेदी जीवों के मोह विभक्ति क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है। अपगत वेदी जीवों के मोह विभक्ति सादी और अध्रुव है। तथा अपगत वेदी जीवों के मोह अविभक्ति अर्थात मोहनीय का अभाव सादी और ध्रुव है। इसी प्रकार अकषायी सम्यक दृष्टि शायिक सम्यक दृष्टि और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनाहारक जीवों के मोहनीय अविभक्ति का अध्रुव पद भी है, क्योंकि अनाहारक अन्यत्र भी पाए जाते हैं ना, इसलिए अध्रुव में भी हो। शेष सभी मार्गणाओं में मोह विभक्ति तथा यथासंभव मोह अविभक्ति सादी और अध्रुव है। विशेषार्थ अभी कथे। गोमट सार कर्मकांड में जो सादी अबंध बंदे इत्यादि गाथा आई है उसमें बंद की अपेक्षा सादित्व आदि का विचार किया है, सत्व की अपेक्षा नहीं। सादी बंद अनादि बंद जो कहा है, ध्रुव बंद अध्रुव बंद, तो ध्रुव बंदी कौन सी प्रकृति है मालूम है? ध्रुव बंदी का अर्थ क्या है? निरंतर बंदी अलग होती है और ध्रुव बंदी अलग होती है। ध्रुव बंदी यानी अनादि से ही बंद है, कब तक? जब तक विच्छित्ति नहीं होती बंद की तब तक। तो बंद हाँ ज्ञानावरण, बहुत अच्छा। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, फिर अंतराय की 5, हाँ 14 हो गए। फिर मोहनी में मिथ्यात्व, 16 कषाय और बैजुगुप्सा, ये ध्रुव बंदी। फिर और बाकी नाम कर्म की है, नाम कर्म की वो स्पर्श रस गंध वर्ण निर्माण है, गुरु लघु है, तेजस कारमाण है, 47 है, हमने देखा ना कारमाण, तेजस कारमाण है, स्पर्शादि 4 है और अगुरु लघु उपघात है, निर्माण बताए, ये 47 हो गई। निरंतर बंदी अलग होती है, निरंतर बंदी ने मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही, उसको निरंतर बंदी कहते हैं। 4 आयु है, आहारक है, हाँ तीर्थंकर प्रकृति है, ये सारे निरंतर बंदी कहलाते हैं। देखो हाँ मोहनीय के आए कितने हुए? ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5 और दर्शन 19, तो ये हो गई। मोहनीय की भी 19, मिथ्यात्व 16 कषाय भयचुगुप्सा 19 38 हो गए, तेजस कारमाण 40 हो गए, हाँ स्पर्शादि 4, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण अगरु लघु उपघात और निर्माण, ये 47 है, ध्रुवबंदी कहलाती है। अब हम यहाँ कहते हैं, यहाँ तो सत्व की अपेक्षा बात चल रही है, वहां तो बंध की अपेक्षा बताई थी। यहाँ क्या कहते हैं? गोमटसार कर्मकांड में जो सादी अबंध बंधे इत्यादि गाथा आई है उसमें बंध की अपेक्षा सादित्व आदि का विचार किया है, सत्व की अपेक्षा नहीं। फिर भी वहां सादी आदि के विषय में बंध की अपेक्षा जो व्यवस्था दी है वह यहाँ सत्व की अपेक्षा जानना। ओ इनमें से सामान्य की अपेक्षा मोहनीय कर्म में अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये 3 पद ही घटित होते हैं, सादी पद नहीं। यही तो बता रहे हैं ना, मूल प्रकृति में तो ऐसे। ये सादी पद नहीं है, ये बात बता रहे यहाँ पर, सामान्य की अपेक्षा बता रहे, सामान्य की अपेक्षा बात बता रहे। सामान्य में तो सादी पद नहीं है, सामान्य ने इन जनरल कथन करेंगे कि जिनके मोहनी की सत्ता है वो तो अनादि से ही है, और ध्रुव है ने जो कभी उसका नाश नहीं करेंगे उनके लिए ध्रुव है, और जो आगे चलकर उसका नाश करेंगे उसके लिए अध्रुव हो जाएगी। यही व्यवस्था अचक्षु दर्शनी जीवों के जानना चाहिए। अचक्षु दर्शनियों में यानी वो एक इंद्रियों को लेना है वहां पर, उस अपेक्षा लेना। चक्षु दर्शन जो है ना, चक्षु दर्शन कोई आदि है तो इसलिए वहां वो सादी वाला घटित होगा। भव्यों के ध्रुव पद छोड़कर मोहनीय कर्म के 2 पद ही पाए जाते हैं, क्योंकि भव्यों के लिए वो ध्रुव, क्योंकि वहां तो योग्यता भी है ना, इसलिए वो ध्रुव वाला नहीं कहेंगे। ध्रुव किसको कहेंगे? जो कभी भी नाश नहीं करेंगे उसको ध्रुव कहेंगे। ये दोनों मार्गणाएं मोहनीय की सत्व विच्छित्ति तक निरंतर रहती है, इसलिए इनमें सादी पद संभव नहीं है। भव्यों के ध्रुव पद नहीं होने का कारण स्पष्ट है। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत और मिथ्या दृष्टि, ये 4 मार्गणाएं अनादि और सादी 2 प्रकार की, ये मार्गणा ही अनादि और सादी दोनों है। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, जैसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान सादी है क्या अनादि है, दोनों है, इसलिए इसको भी दोनों में घटित किया, यानी वो मार्गणाए ही सादी है। जिन जीवों ने कभी भी मिथ्या तो गुणस्थान नहीं छोड़ा और न छोड़ने की संभावना है उनकी अपेक्षा अनादि है, और शेष जीवों की अपेक्षा सादी है, तथा इन मार्गणाओं में भव्य भव्य हुआ है, भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः इनमें कौन सी मार्गणा, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, इन मार्गणाओं में भव्य भी जीव होते हैं, अभव्य भी होते हैं। अतः इनमें मोहनीय के सादी आदि चारों पद संभव है, ये मार्गणा ही सादी होती है, इसलिए उनमें भी वो सादी पद संभव है। अभव्य जीवों के अनादि और ध्रुव पद ही होता है, यह स्पष्ट ही है। अपगत वेदी, अकषायी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि और अनाहारक आदि मार्गणाएं ऐसी है जिनमें मोहनीय कर्म का सद्भाव और मोहनीय का कर्म का अभाव दोनों पाए जाते हैं। हमने देखा ना अभी लगा के देखा था, है भी और नहीं भी है, ऐसी सब मार्गणाएं बताई थी, तथा ये मार्गणाएं सादी है, अतः इनमें मोहनीय के सद्भाव की अपेक्षा सादी और ध्रुव अध्रुव ये दो पद ही होते हैं। पर इन मार्गणाओं में स्थित जिन जीवों के मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है उनके पुनः मोहनीय कर्म नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं, ये मार्गणाएं साधी है, कौन सी, अपगत वेदी, अकषायी, क्योंकि ग्यारहवें में गया अपगत वेदी हो गया उपशम श्रेणी में, फिर नीचे आया तो सवेदी हो गया, तो कहते अकषायी सम्यक दृष्टि ये जो सब उन्होंने घटित किए हैं उनमें ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा और बारहवें गुणस्थान की अपेक्षा दो अपेक्षा लगाएगी। इन मार्गणाओं में ग्यारहवें बारहवें दोनों गुणस्थान होते हैं, कौन कौन से, अपगत वेदी में भी, अकषायी में भी, सम्यक दृष्टि में भी, क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी और अनाहारक आदि मार्गणाओं में। अनाहारक में भी वो है और नहीं है वाला वो घटित होता है ना केवली में, तो कहते हैं ये ऐसी है मार्गणाएं कि सादी है, अतः इनमें मोहनीय के सद्भाव की अपेक्षा सादी और अध्रुव ये दो पद ही होते हैं। सद्भाव की अपेक्षा मार्गणा ही सादी है, जैसे अभी यहाँ जो है ना कौन सी अनाहारक, अनाहारक तो विग्रह गति में है, अनाहारक तो कितने समय के लिए होगा, अधिक से अधिक तीन समय के लिए, तो वो मार्गणा ही सादी है, तो उस मार्गणा की अपेक्षा से हम वहां सादी कह सकते हैं। तो वहां कौन सा घटित होगा, जहां मोहनी की सत्ता है वहां सादी और अध्रुव ये दो घटित होंगे। पर इन मार्गणाओं में स्थित जिन जीवों के मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है, अब अपगत वेदी, अकषायी, सम्यक दृष्टि वगैरह वगैरह में जिनका अभाव हो गया, ऐसे बारहवें तेरहवें जहां जो एप्लीकेबल है ऐसे गुणस्थान है, उनके पुनः मोहनीय कर्म नहीं पाया जाता। उन्होंने तो सत्ता का पूर्ण नाश कर दिया है, तो कहते अतः इन मार्गणाओं में मोहनीय कर्म के अभाव की अपेक्षा साधी और ध्रुव ये दो पद होते हैं। अभाव की अपेक्षा, मोहनीय का अभाव कर दिया है, तो अभाव पहले नहीं था अभी किया है तो सादी हुआ, और जो अभाव के अभी कायम के लिए अभाव रहने वाला है इसलिए ध्रुव। यहां ध्रुव पद स्थायित्व की अपेक्षा कहा है, यानी वो रहता है क्या नहीं रहता, उसको ध्रुव कहा। पहले भी ध्रुव कहा था, किसको, सत्ता वाले को भी ध्रुव कहता, तो सत्ता स्थायी है तो ध्रुव कहा, जैसे अभव्यों में। अब यहां जो अभाव कर दिया वो ध्रुव हो गया, इसलिए यहां भी ध्रुव लिया। इतनी विशेषता है कि समुद्घात गत सहयोगी केवलियों के अनाहारकत्व सादी और शांत है। अनाहारक तीन समय के लिए है, कौन से, प्रतर सहयोग केवली की अपेक्षा बता, अनाहारक सहयोग केवली की अपेक्षा अनाहारक, वो तो सादी भी है शांत भी है। अतः अनाहारक जीवों के मोहनीय की अविभक्ति का अध्रुव पद भी होता है, भी लगाया, 14वें में तो ध्रुव कहेंगे, परंतु इनको अध्रुव भी कहते हैं। इनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओं में नरक गति आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोह विभक्ति ही है, क्योंकि वहां बिना मोह के कोई नहीं पाए जाते। और यथाख्यात संयत आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोह विभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों है, क्योंकि यथाख्यात संयम है तो 11वें वाले को मोह विभक्ति है, आगे वालों को नहीं है। इनमें पूर्वोक्त व्यवस्था के अनुसार सादी आदि पद जान लेना चाहिए। जो मार्गणाएं सादी है वहां वो मोह विभक्ति को भी सादी कहा है। इस प्रकार सादी कौमा लगाना, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगम समाप्त हुआ। अब स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये स्वामित्व जब कहते हैं तो एक जीव की अपेक्षा घटित करते हैं। हमेशा हमने एक जीव पर स्वामित्व काल अंतर और बाद में नाना जीव भंग विचय बताया था। तो दो प्रकार का निर्देश है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति किसके है? तो कहते हैं जिसके मोहनीय कर्म का मोहनीय करो, मोहनीय हुआ, मोहनीय कर्म का सत्व पाया जाता है, ऐसे किसी भी जीव के मोहनीय विभक्ति है। अन्यतर कहेंगे ना कोई भी जीव, यानी स्वामी कौन है मोहनीय कर्म का? तो जिसके मोहनीय का सत्ता है ऐसा कोई भी जीव उसका स्वामी है। मोहनीय अविभक्ति किसके है? तो जिसके मोहनीय कर्म के सत्व का नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीव के मोहनीय अविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव हो उनका कथन कर लेना चाहिए। विशेषार्थ गुणस्थानों की अपेक्षा मोहनीय कर्म 11वें गुणस्थान तक पाया जाता है और आगे उसका असत्व है, यानी 11वें गुणस्थान का कोई भी जीव 11वें गुणस्थान तक के उनके सभी के मोहनीय का सत्व है और आगे के जीवों को नहीं है, यानी उसका असत्व है। अतः ओघ से, ओघ की अपेक्षा यानी सामान्य से, गुणस्थान की अपेक्षा से मोहनीय विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले दोनों प्रकार के जीव बन जाते हैं। अब आदेश की अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी जिस मार्गणा में 11वें से नीचे के ही गुणस्थान संभव है वहां मोह विभक्ति ही होती है। हमने देखा ना मात्र मोह विभक्ति है, ऐसे ऐसे गति मार्गणा में नरक गति होगी, हमने उसकी लिस्ट देखी थी अभी। हाँ, और जिस मार्गणा में 11वें से आगे के गुणस्थान भी संभव है, भी लगाए, जैसे अथाक्य संयम है, अकेला संयत कह दिया, ये योग वाले में भी बता दिया हमने, वहां मोह विभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों होती है, इसकी भी हमने चर्चा की थी। इस प्रकार स्वामित्व अनुयोग द्वारा समाप्त हुआ। पहले समुत्कीर्तना में जहां कहा था वही यहां स्वामित्व में भी घटित हो जाता है। अब कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। यहां जो काल कहा है वो एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं, नहीं तो सभी जीवों की अपेक्षा तो सदा काल कहेंगे। दो प्रकार का ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, मोहनी की सत्ता कितने काल तक रहेगी, सामान्य की बात तो अनादि अनंत, कि सभी जीवों में अनादि अनंत होगी, नहीं नहीं, अब अनादि शांत दोनों ही विकल्प हैं। तो किसी में अनादि अनंत है अभव्यों में, और जो भव्य वो मोक्ष जाएंगे वो अनादि शांत। मोहनीय अविभक्ति का कितना काल है, एक बार सत्ता का नाश कर दिया तो कितने काल तक रहेगा, अनंत काल तक, तो क्या कहेंगे सादी अनंत काल। इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी जीवों के मोह विभक्ति और मोह अविभक्ति का काल कहना चाहिए, किंतु इतनी अविभक्ति ने जब नाश कर दिया, सत्ता का नाश कर दिया, उसका काल कहना चाहिए। अचक्षु दर्शनियों में दोनों विकल्प है, अचक्षु दर्शनीय में सत्ता वाले भी है, मोहनीय विभक्ति वाले भी है, अविभक्ति वाले भी है। अविभक्ति वाले अचक्षु दर्शनी कौन से है? बारहवें गुण स्थान में। उसका काल कितना होगा? सादी और बारहवा गुण स्थान अनंत है, अंतर्मूर्त है ना वो। हाँ, हमने अचक्षु दर्शन में लगाना है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, इसी प्रकार। परंतु इतनी विशेषता है कि इनके मोह अविभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्यों? अचक्षु दर्शन होते हुए अविभक्ति कर दी उन्होंने, मोहनी की सत्ता का नाश हुआ, तो अंतर्मूर्त होगा ना। सादी ने, सादी में बोलना है तो सादी शांत कहेंगे, तो काल कितना है? तो अंतर्मूर्त है। जितना बारहवें का काल है उतना उसका है, क्योंकि अचक्षु दर्शन रहते हुए मोह की अभिव्यक्ति कितने काल तक रह सकती है? बाद में वो केवल दर्शन ही हो जाते हैं ना। अचक्षु दर्शन का काल पूरा हुआ उनका, विशेषार्थ। अभव्य जीवों की अपेक्षा मोहनीय का काल अनादि अनंत है, तथा इतर जीवों के मोहनीय का काल अनादि शांत है। इतर यानी अभी भव्य जीवों की अपेक्षा। अचक्षु दर्शन बारहवें गुणस्थान तक सभी संसारी जीवों के निरंतर रहता है, इसलिए अचक्षु दर्शनी जीवों के मोहनीय का काल अनादि अनंत और अनादि शांत दोनों प्रकार से बन जाता है। अनादि अनंत किस लिए? अचक्षु दर्शनी है और अभव्य है, तो अनादि अनंत होगा। और जो अनादि से है, अब शांत हो गया, तो बारहवें में वो अंत हो गया ना उसका, तो अनादि शांत कहेंगे। ये मोहनी विभक्ति का काल बताया, और अविभक्ति का काल यानी अचक्षु दर्शन होते हुए अविभक्ति हो गई है, नाश कर दिया उन्होंने, तो अविभक्ति का काल सादी हो गया। हाँ, और सादी अनंत इसलिए है कि उसका आदि तो है, क्योंकि जब कोई जीव बारहवें गुणस्थान को प्राप्त होता है तभी उसका प्रारंभ होता है। पर मोह अविभक्ति का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि जिसने मोहनीय का पूरी तरह से अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। परंतु अचक्षु दर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है। यदि एक जीव की अपेक्षा अकेले मोह अविभक्ति का काल पूछेंगे तो सादी अनंत है, परंतु यहाँ अचक्षु दर्शन में अविभक्ति का काल पूछा है, तो बारहवा गुणस्थान तो अंतर्मूर्त वाला ही है। इसलिए कहते हैं अचक्षु दर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है, और बारहवें गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है। अतः अचक्षु दर्शनी जीवों के मोह अविभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। ये ख्याल में आई इतनी बात? अचक्षु दर्शन है किसको होता है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। कौन से गुणस्थान तक होता है? पहले से लेकर बारहवें तक, सभी को है अचक्षु दर्शन। अब उसमें जिसने मोहनी की सत्ता का नाश किया है, तो बारहवें के पहले समय से काल गिनना है अभी उसका। अचक्षु दर्शन होते हुए मोहनी की अविभक्ति है, तो बारहवें का काल समाप्त होते अचक्षु दर्शन भी समाप्त हो जाएगा, केवल दर्शन चालू हो जाएगा। तो अचक्षु दर्शन के साथ मोह अविभक्ति का काल कितना है? सादी शांत और अंतर्मूर्त कहो, ख्याल में आया ना। और यदि हम सामान्य से बात करेंगे, चक्षु दर्शन की अपेक्षा किए बिना किसी जीव में वो कितने काल तक है, तो सादी अनंत। बारहवें का जघन्य और उत्कृष्ट काल दोनों ही अंतर्मूर्त ही है, यानी उसमें कोई जघन्य उत्कृष्ट नहीं है, ऐसा भी कहो तो भी चले। हाँ, उसमें भी अंतर बताया, या ऐसा भी ले सकते कि दोनों ही अंतर्मूर्त ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा भी ले सकते। बारहवें में पहले हमने देखा था वेरिएशन है करके। अब आदेश निर्देश, अभी मार्गणाओं में घटित करेंगे। आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, उनमें अविभक्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो विभक्ति वाले ही है देव, मोहनीय की सत्ता वाले ही है, तो उसका काल कितना होगा? हमें अभी क्या रखना चाहिए ध्यान में? नारकी होते हुए मोहनीय की सत्ता। तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, अभी वहां की जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु कहेंगे। तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। अब पहले नरक गति में अभी 7 विभाग करेंगे, पहले नरक के दूसरे नरक के वो बता रहे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं पृथ्वी में रहने वाले नारकियों में मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल सातों नरकों में क्रम से 10,000 वर्ष, साधिक एक सागर, साधिक में कितना डालना कॉमा है, 10,000 वर्ष कॉमा साधिक एक सागर, तो साधिक में कितना लेना? दूसरे नरक की जघन्य आयु बोल, एक समय ज्यादा, जघन्य है ना, पहले जो नरक की उत्कृष्ट आयु एक सागर है, दूसरे नरक की जघन्य आयु एक समय प्लस एक सागर है, साधिक तीन सागर, ये दस, ये कम से कम जघन्य आयु की बात चल रही है, तो पहले नरक की 10,000 वर्ष, दूसरे की साधिक एक सागर, तीसरे की साधिक तीन सागर, चौथे की साधिक सात सागर, पांचवे की साधिक 10 सागर, छठे की साधिक 17 सागर और सातवें की साधिक 22 सागर। अब उत्कृष्ट बताएंगे, जो अभी हमने साधिक साधिक कहा ना, तो उसके वो पहले की उत्कृष्ट होती है, तथा उत्कृष्ट काल अपने अपने नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, कितने हैं? पहले की एक सागर, दूसरे की तीन सागर, तीसरे की सात, चौथे की 10, पांचवे की 17 और छठे की 22 और सातवें की 33। नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषार्थ, नरक में मोहनीय कर्म का एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की बात चल रही है, नाना जीव की अपेक्षा क्या कहेंगे? सदाकाल, हमेशा ही। तो नरक में मोहनीय कर्म का एक जीव की अपेक्षा कहां कितने काल तक सत्व पाया जाता है, इसका विचार किया गया है। सामान्य से नरक में एक जीव की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। सामान्य से जब कहते हैं तो सभी नरकों के मिलकर वो कथन होगा, जहां जो एप्लीकेबल है। तो पहले नरक की जघन्य 10,000 है और सातवें की उत्कृष्ट 33 है, फिर भी सामान्य कथन करेंगे तो नारकियों में ये जघन्य और ये उत्कृष्ट ऐसा कहेंगे। अतः सामान्य से एक जीव की अपेक्षा मोहनीय के सत्व का जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 33 सागर होता है। किसमें? नरक गति की बात चल रही है, मार्गणों में। पर प्रत्येक पृथ्वी की अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है, वहां मोहनीय कर्म का सत्व भी एक जीव की अपेक्षा उतने काल तक समझना चाहिए, अर्थात इतने काल तक वह जीव विवक्षित नरक में रहता है, उसके बाद दूसरी गति में चला जाता है। नरक गति में तो एक ही भव लेना है, मनुष्य तिर्यंचों में तो लगातार अनेक भव भी लेकर सकते हैं, इसलिए नरक गति की यहाँ बात कर रहे हैं। इसलिए वहां उस जीव की अपेक्षा मोहनीय कर्म का सत्व उतने काल तक ही कहा गया है। आगे जहां भी एक जीव की अपेक्षा काल बतलाया है, वहां भी यही अभिप्राय समझना चाहिए। तिर्यंच गति में अब ये सोचना पड़ेगा, है ना? तिर्यंचों में मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? तो कहते हैं जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, क्षुद्र हुआ, क्षुद्र करना उसे, और उत्कृष्ट अनंत काल है। तो कितना अनंत है? कि जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों में जितने समय हो उतना है। ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन किस अपेक्षा से कहा? एकेंद्रियों की अपेक्षा से। इतर निगोद की अपेक्षा लेंगे तो ढाई पुद्गल परिवर्तन होते हैं, परंतु एकेंद्रियों में चला गया है। एकेंद्रियों में बार बार निगोद में भी जाएगा, अन्य एकेंद्रियों में भी आएगा, इस तरह से एकेंद्रियों में ही रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। निगोद वन ऑफ द एकेंद्रिय है, ओनली निगोद में रहा, इतर निगोद में तो ढाई पुद्गल परिवर्तन, और निगोद में से अन्य भी एकेंद्रियों में आता रहेगा, फिर दोबारा निगोद में चला जाएगा, फिर एकेंद्रियों में आएगा, अन्य एकेंद्रियों में, निगोद भी एकेंद्रिय ही है। तो एकेंद्रिय कहेंगे तो एकेंद्रिय इन जनरल की बात होती है, उसका उत्कृष्ट काल। यहां नित्य वाले को छोड़ा है, नित्य तो अनादि से ही वहां पड़ा है नित्य निगोद, यहां इतर निगोद और अन्य एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल, जहां बिगिनिंग होती है और फिर एंड होता है, उसको यहां उत्कृष्ट काल कहेंगे। जो अनादि से उसमें पड़ा है वो तो अनंत काल से वहां है ही है, परंतु जो त्रस में से एकेंद्रियों में गया है तो वहां अधिक से अधिक कितना काल घूम सकता है? तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। एक पुद्गल परिवर्तन कितना बड़ा देखा ना अभी, हाँ, देवलाली में इतर निगोद का ढाई पुद्गल परिवर्तन, यानी अकेले निगोद की पर्याय करता रहे तो की बात है। जो अनंत काल के बराबर होता है, जब कोई एक जीव, कोई एक मनुष्य जीव लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच में सबसे जघन्य आयु खुद्दा भाव ग्रहण को लेकर उत्पन्न होता है। या ऐसा क्यों लिखा कि कोई एक मनुष्य जीव लब्धि अपर्याप्त तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है? हाँ जया बहन, आप कह सकती है, जो नए लोग हैं ना उनको विचार करना है, तो जो नए लोग जरा आराम करें। क्यों नहीं समझे मयंक भाई, आप कहेंगे? देखो, हमें तिर्यंच गति की बात करनी है, तो अन्य गति में से उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, तो अभी हमें कौन सा रहने का है? बड़ा से बड़ा, यानी कम से कम काल, अभी जघन्य काल घटित करना है। तो जघन्य काल कहाँ होता है? क्षुद्र भव ग्रहण, लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच, तिर्यंच गति घटित करना है। तो पहली नेसेसिटी क्या है? अन्य तीन गतियों में से आना चाहिए। दूसरी बात क्या है? लब्धि अपर्याप्त कों का भव घटित करना है, तो लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच में कौन जन्म ले सकता है अन्य गति से? तो देव और नारगी तो नहीं आ सकते, इसलिए मनुष्य गति से आया, ऐसा लिया। अन्य गति से लाने के लिए अन्य कोई भी तीन चलते, परंतु क्षुद्र भव ग्रहण लेना है यहाँ पर, तो ये मनुष्य से ही आया हुआ लेना चाहिए, तभी उसकी बिगिनिंग होगी। उस देव गति में तो एकेंद्रिय में हाँ पर्याप्त होता है, पर यहाँ हमको क्षुद्र भव ग्रहण घटित करना है ना। देव में से आ सकता है एकेंद्रिय में, नारकी में से वो भी नहीं आ सकता। देव में से आता है वो भी पर्याप्त बादर होता है, कौन कौन से में? पृथ्वी, जल और वनस्पति के बादर में आ सकता है, सूक्ष्म नहीं जा सकता। सूक्ष्म में नहीं जाता और साधारण में भी नहीं जाता, अपर्याप्त में भी नहीं जाता। तो बादर, पर्याप्त और वो जल, अग्नि वायु छोड़कर तीन, वो भी कौन से देव जा सकते हैं? बहुनत्रिक और सौधर्म ईशान, ऊपर वाले नहीं जाएंगे, ऊपर वाले एकेंद्रियों में नहीं जाते। हाँ, अब यहाँ हम देखते हैं, देखो, हाँ, खुद्दा यानी क्षुद्र, क्षुद्र भव यानी लब्धि अपर्याप्त का जो है ना, एक श्वास में 8-10 बार कहते हैं, छोटे में छोटी आयु, उसको खुद्दा, क्षुद्र, क्षुद्र को खुद्दा कहते हैं। नारकी पंचेंद्रिय ही होता है, हाँ, पर्याप्त, क्योंकि उनके वो प्रकृति बनती ही नहीं है। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये प्रकृति देवों की भी नहीं बनती, नारकियों की भी नहीं बनती, परंतु देवों में बादर, पर्याप्त और स्थावर तो बन सकती है, और नारकियों में वो भी नहीं बनती है। बंद योग्य प्रकृति कौन सी है, उसकी भी वो लिस्ट हमने देखी थी, हर एक मार्गणा में। देवगति देखा, जब कोई एक मनुष्य, देखो एक एक शब्द सोच समझ कर डाला है, कोई मनुष्य मरकर यहाँ क्यों लाया? क्योंकि अन्य गति से आना चाहिए, तभी तो स्थिर्यंच गति वहां शुरू हो जाती है, और उसमें भी हमको लब्धि अपर्याप्तक का भाव चाहिए। तो लब्धि अपर्याप्त तीर्यंच कौन होगा अन्य गति में से? तो मनुष्य ही हो सकता है। कोई एक मनुष्य जीव लब्धि अपर्याप्तक तीर्यंच में, अब कोई एक मनुष्य में भी हमको और स्पेसिफिक होना चाहिए, तो क्या करेंगे? भोग भूमि का चलेगा कि कर्म भूमि का? भोग भूमि के तो देव में चले जाएंगे। तो कोई एक मनुष्य जब कहते हैं, तो कोई एक मनुष्य में वो पर्याप्त भी हो सकता है, लब्धि अपर्याप्त भी हो सकता है, कर्म भूमि का होना चाहिए। लब्धि अपर्याप्तक तीर्यंच में सबसे जघन्य आयु क्षुद्रा भव ग्रहण को लेकर उत्पन्न होता है, यानी क्षुद्र भव ग्रहण वाली जो मिनिमम आयु उसकी बात है। क्षुद्र भव ग्रहण में भी जघन्य से उत्कृष्ट आयु के अनेक विकल्प होते हैं, हमने पहले देखा था, और उनमें भी वो सारी बंद की अपेक्षा और जीवनी की अपेक्षा उसमें भी कदलीघात होता है। तो यहाँ तो ये लिया, कम से कम आयु के साथ उत्पन्न हुआ, और आयु के समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य गति में चला जाता है, ये भी आवश्यक है, क्योंकि हमको वो क्षुद्र भव ग्रहण ही लेना है। दोबारा तीर्यंच में ही उत्पन्न हुआ तो उसकी गति बढ़ेगी ना, हमको तीर्यंच गति होते हुए मिनिमम काल चाहिए। तो अभी वो लब्धि अपर्याप्त तक तो देव और नरक में तो नहीं जाएगा, कोई एक इंद्रिय से, वो तो असंगी तक के भी, असंगी तो जा सकते परंतु चतुर इंद्रिय तक के तो देव और नारकी नहीं हो सकते। तो वो मनुष्य में ही उत्पन्न किया फिर दोबारा, क्या कहते हैं, जब कोई आयु के समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य गति में चला जाता है, तब तीर्यंच गति में रहने का काल खुदा भव ग्रहण प्रमाण ग्रहण प्राप्त होता है। ये जो तीर्यंच में खुदा भव ग्रहण कहा, मैं और स्पेसिफिक उसमें पूछना चाहती हूँ, तो वो कौन सा होगा पांच थावरों में से? पांच थावरों में से कौन सा क्षुद्र भव होगा उसका? हाँ, निगोद क्यों नहीं होगा? निगोद क्यों नहीं होगा? मनुष्य में जा सकता है। हाँ, अरे मनुष्य में जाकर सूक्ष्म निगोद वाला तो मुनि भी हो सकता है, उसकी काम। हाँ, वायुकायिक और अग्निकायिक को छोड़कर, क्यों? मनुष्य में से उसमें उत्पन्न तो हो सकता है परंतु उनमें से मनुष्य में नहीं जा सकता, इसलिए उसको छोड़ना है अपर्याप्त में से। तथा ये तो जघन्य की बात हो गई। जब कोई एक जीव अन्य गति से आकर तिर्यंच गति में ही निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, अब अन्य गति लिया क्योंकि तिर्यंच गति में अभी उत्कृष्ट काल बताना है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो तिर्यंच गति में आना चाहिए अन्य गति से। तो कौन से गति से लाएंगे अभी उसको? अभी तीनों गति में से कहीं से भी आएगा, क्योंकि पंचेंद्रिय में भी आ सकता है ना, तिर्यंच में देवनार के आ सकते हैं, तीर्यंच में आना चाहिए। कहां से आया है? मनुष्य से आए, देव से आए, नरक से आए, चलेगा, क्योंकि पहला वो पंचेंद्रिय का करके बाद में चला जाएगा द्विंद्रिय एकेंद्रिय सब में। तो तीर्यंच गति में ही निरंतर परिभ्रमण, अभी वो तीर्यंच गति में आया है, भले पंचेंद्रिय होगा कि द्विंद्रिय होगा कि कहीं भी, फिर वो बारम्बार तीर्यंच में ही रहे, एकेंद्रिय में जाए, फिर द्विंद्रिय आदि में आए, परंतु तीर्यंच गति छोड़कर अन्यत्र नहीं उपजे, तो उस जीव के तीर्यंच गति में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों से अधिक नहीं है। ये अधिक नहीं है, दिलासा दे रहे हमको ये। अच्छा, इसके बाद वह नियम से अन्य गति में चला जाता है, इसलिए एक जीव के तीर्यंच गति में निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्राप्त होता है, यानी इतना अधिक से अधिक हो सकता है। इसी विवक्षा से तिर्यंच गति में एक जीव की अपेक्षा मोनिय का जघन्य और उत्कृष्ट सत्व क्रम से, यानी जघन्य के लिए खुद्दा भव यानी क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप कहा है। तिर्यंच गति में ऐसे भी अनंतानंत जीव है जिन्होंने अभी तक दूसरी पर्याय प्राप्त नहीं की है और न आगे करेंगे, ये नित्य निगोद वाले हैं ना, तो भले वो नित्य में से बाहर भी आएगा, ऐसे भी अभव्य होगी ना कि अन्यत्र भी तिरंच में आए, फिर अभी तक उन्होंने अन्य तीन गति प्राप्त ही नहीं की। यद्यपि उनकी अपेक्षा तिरंच गति में मोहनीय का काल अनादि अनंत होता है, पर वह काल यहाँ विवक्षित नहीं है। यहाँ तो जो जिसको आदि है और जिसको अंत है ऐसा ही काल यहाँ गिना है। होगी ना इससे भी, क्योंकि निगोद में से, नित्य निगोद में से आए, एक इंद्रियों में आए, अन्य एक इंद्रियों में आ गए, या वनस्पति प्रत्येक में आ गए, और फिर वो चलता रहे उसमें, वो तो नहीं निकले, तो उसकी तिरंच गति ही है। हाँ नित्य निगोद जो है वो तो, हाँ अच्छा, बाद में असंख्या तुद्गल हो जाएगी। ये नित्य निगोद ही लेना फिर। पर वह का भाई कहते अपन तो उसमें नहीं है, मनुष्य हो गए तो। पर वह काल यहाँ विवक्षित नहीं है, क्योंकि काल प्ररूपणा में सादी शांत काल की अपेक्षा विचार किया है। ये सादी शांत काल ही यहाँ काल में बताते हैं, जो अनादि अनंत काल है उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन्हें भी तिर्यंच में, तिर्यंच गति तो इन जनरल बात थी, तिर्यंच गति में एक पहला प्रकार होता है सामान्य तिर्यंच, उसकी अपेक्षा तो बता चुके। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच में रहने का उत्कृष्ट काल, इन्हें लगातार पंचेंद्रिय, फिर संगी असंगी दोनों के गिनना, पंचेंद्रिय तिर्यंच कहते हैं तो संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लेना पड़ेगा। हाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, ये पंचेंद्रिय पर्याप्त लेते हैं, तिर्यंच पर्याप्त, तो उसमें वो कुछ पूर्व कोटि के भाव लेकर अंत में वो तीन पल्ले वाले लेना। और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, ये लगातार आठ भाव वाले ले गए, लास्ट वाला वो लेना है। हाँ तीन पल्ले वाला। मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? अब उनमें भी जगन्य काल क्रमशः खुद्दा भव ग्रहण, पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा ना, तो पंचेंद्रिय में पर्याप्त भी हुए अपर्याप्त हुए, इसलिए यहाँ जगन्य काल खुद्दा भव ग्रहण। अंतर्मूर्त, ये जो पर्याप्तों के लिए लिया और योनिमति के लिए लिया, वो जगन्य काल अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि ये पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं और अंतर्मूर्त है, यानी तिर्यंच पर्याप्त के लिए भी और योनिमति के लिए भी अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल प्रत्येक का, प्रत्येक का यानी तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच में पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले हैं। ये पूर्व कोटि पृथक्त्व जो है, पृथक्त्व की संख्या अलग अलग होगी हर एक में। पंचेंद्रिय तिर्यंच कहेंगे तो उसमें संगी भी आए असंगी भी आए, और उसमें वो तीनों वेद वाले भी आ जाएंगे, तो उसमें तो वो पृथक्त्व की संख्या बड़ी होगी, पर्याप्तों में वो कम होगी, और योनिमति में तो आठ भव लगातार होंगे, तो पृथक्त्व की संख्या भी अलग अलग होगी उसमें। विशेषार्थ, हाँ योनिमति हमने देखा ना, हर एक वेद के साथ आठ आठ तिर्यंच में, विशेषार्थ में देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के तिर्यंच का ग्रहण हो जाता है, अतः उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण कहा है। पर पर्याप्त जीवों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त से कम नहीं है, अतः पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। योनिमति ने स्त्रीवेदी। तथा उक्त तीनों प्रकार के जीवों की पर्याय को प्राप्त होकर, योमिमति हुआ, योनिमति करना, न करना उसको, क्या कहते हैं, कोई जीव उन पर्याय में जन्मा तो उन पर्याय को प्राप्त होकर प्रत्येक का तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले है। अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंचों में, जब पंचेंद्रिय तिर्यंच कहते हैं तो संगी असंगी दोनों को लेना और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लेना, 95 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य काल तक रहता है। 95 पूर्व कोटि, 95 पूर्व कोटि कैसे लेना, यानी 3 पल्य वाला मिला देंगे तो 96 भव हो जाते हैं उसके। हाँ तो 48 48 करना ना, तो 48 40 हुए, यानी संगी के 48 और उसके 48 48। अभी वो 3 वेदों में तो 16 16 हो जाएगी, तो 8 के बाद एक अपर्याप्त का भव होगा बीच में, 8 पर्याप्त फिर एक अपर्याप्त फिर 8 पर्याप्त, यानी कोई पुरुष वेदी है तो संगी में भी 3 वेद वाले अलग अलग लेना और असंगी में भी 3 वेद वाले अलग अलग लेना। लगातार पूर्व कोटि के 8 भव हो सकते हैं और फिर से दोबारा यहाँ कितने लिए, 95 यानी 95 पूर्व कोटि प्लस अंतिम भव 3 पल्ले वाला। अंत में क्यों रखा, वहां से तो देव होने वाला है, तीरंच गति समाप्त हो जाएगी। हमें कौन सा क्राइटेरिया है, तीरंच भी होने चाहिए और पंचेंद्रिय होना चाहिए, पंचेंद्रिय में संगी भी चलेगी असंगी भी चलेगी, पर्याप्त भी चले और अपर्याप्त भी चले। तो पंचेंद्रियों के लगातार जो भव हो गए संगी के असंगी के किसी एक वेद के साथ, तो लगातार 8 भव हो सकते हैं एक वेद के साथ। तो लगातार 8 लिए हमने तो अधिक से अधिक आयु कितनी हो सकती है, पूर्व कोटि। पूर्व कोटि के 8 लगातार हो गए, अंतिम भव अभी ले लेंगे तो आगे तो देव में चला जाएगा, तो उसको एकदम लास्ट में रखना है, 96 उसको रखना है। तो हम क्रम से ले लेंगे, पुरुष वेदी 8 और 8 16, बीच में एक अपर्याप्त का लेना है। हाँ तो संगी के भी हो और असंगी के भी हो जाएंगे, तो 64 तो इधर हो गए, नहीं 8 चौक 32 हो गए, 32 हो गए ना, 8 दुनी 16 दुनी 32। एक वेद के एक पुरुष वेद ले ना, कोई भी एक वेद ले लो, एक वेद लिया संगी के 3, आप ऐसा ले लो या एक वेद में संगी और असंगी ले लो, कैसा भी करो। हाँ तो देखो पुरुष वेद के कितने हो गए संगी के, 8 हुए, तो एक अपर्याप्त फिर 8 यानी 16 हो गए, फिर 8 पर्याप्त। एक वेद में पहले 8 पर्याप्त फिर अपर्याप्त फिर 8 पर्याप्त, बराबर। हाँ अपर्याप्त के बिना होगा ही नहीं, वो अपर्याप्त के बिना होगा ही नहीं, 8 पर्याप्त नहीं, एक ही अपर्याप्त लेना है, अपर्याप्त में एक ही घटित करना है। देखो देखो ये पुरुष वेद के 8 हो जाएंगे संगी के, संगी सुनो सुनो, अभी हम संगी को लेंगे, संगी असंगी को बाद में लेंगे या असंगी को पहले लेंगे, क्योंकि लास्ट में संगी रखना है ना, भोग भूमि में जाना है ना। तो असंगी के पुरुष वेद 8 हुए, फिर एक अपर्याप्त फिर पुरुष वेद 8 हुए। अब असंगी में सभी घटित करेंगे तो पुरुष वेद के 8 8 16 हुए, स्त्री वेद के 16 हुए और नपुसक वेद के 16 हुए, 48 हो गए ना ये। ऐसे ही 48 संगी के भी घटित करने हैं, परंतु जो वो लास्ट वाला जो है ना, वहां जाने के पहले की बात है, अंतिम वो पुरुष वेद रखो या स्त्री वेद रखो, अंतिम स्त्री या पुरुष रखो, पहले नपुसक वेद वाला वहां जा सकता है, परंतु वहां जाने के बाद एक कोई स्त्री या पुरुष वेद होगा उसका, इसीलिए अंत में पुरुष या स्त्री रखो ऐसा मैंने कहा। तो ये जो असंगी के 48 ख्याल में आए, ऐसे ही संगी के 48 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते। तो संगी का जो लास्ट 48th वाला है, हाँ, उसको भोग भूमि में रखना है, वो तीन पल्ले वाला। तो ये 48 और 48 96 होते हैं, तो 95 पूर्व कोटि वाले हो गए, और लास्ट जो है 96 नंबर का वो तीन पल्ले का लेना है। तो इसलिए क्या लिखा, हाँ, बीच बीच में जो कुछ ज्यादा भी हो गए फिर अंतर्मूर्त में आने वाले पूर्व कोटि में समा जाएंगे। हाँ, उसको ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करनी अपर्याप्तों की। ये ख्याल में आई ना बात? अच्छा, इसमें है, अर्थात पंचेंद्रिय तिरियंचों में जीव 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले काल तक रहता है। पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्तों में 47 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले काल तक रहता है। अभी पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त की बात है, तो पर्याप्तों में कैसे लगाना है? तिरियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त, पर्याप्त इतना ही अप्लाई, यहाँ बीच में अपर्याप्त नहीं डालना है। तो संगी और असंगी के लेना है, तो संगी के 24, असंगी के 24 कितने होते हैं? 48 होते हैं। 48 में लास्ट वाला भोग भूमि वाला रखना है, तो लास्ट बट वन वो स्त्री पुरुष जो कुछ रखना है उसको रख सकते हैं, लास्ट वाला किस में? भोग भूमि में जाकर वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा वाला, हाँ, वहां नपुंसक वेदी नहीं रहेगा, इतनी बात लेनी है। 48 वाला है वो पुरुष या स्त्री का रखना,
हाँ,
कोई भी ले लो चलेगा। पंचेंद्रिय, ये समझ में आए? अभी पर्याप्त लेना है, बीच में अपर्याप्त लेते हैं तो 16-16 हो जाते हैं, यहाँ बीच में अपर्याप्त को नहीं लेना है, पर्याप्त ही पर्याप्त चलेगा। तो 47 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले काल तक रहता है, और योनिमति पंचेंद्रिय तिरियंचों में, अभी योनिमति होने चाहिए, तो संगी और असंगी के हो जाएंगे 16, तो 15 तो पूर्व कोटि हो जाएंगे, और लास्ट वाला तीन पल्ले का। योनिमति पंचेंद्र तिरियंचों में 15 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले काल तक रहता है, तथा अभी कौन सा लिया, कोई एक जीव तिरियंचों में उत्पन्न हुआ और वहां संगी स्त्रीवेदी पुरुषवेदी और नपुसक वेदियों में, अच्छा यथा नहीं कथा था, नहीं यथा कहा उन्होंने, ये कैसे है वो फिर समझा रहे यहाँ पर, यानी अन्य गति में से तिरियंच में आया, संगी स्त्रीवेदी पुरुषवेदी और नपुसक वेदियों में क्रमशः 8-8 पूर्व कोटि काल तक परिभ्रमण करके अनंतर इसी प्रकार असंगी स्त्रीवेदी पुरुषवेदी नपुसक वेदियों में 8-8 पूर्व कोटि काल तक परिभ्रमण करके पश्चात लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिरियंच में उत्पन्न हुआ। ये लगातार 8-8 लिए फिर अपर्याप्त में डाला, वहां अंतर्मूर्त काल तक रहकर पश्चात असंगी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद के साथ क्रमशः 8-8 पूर्व कोटि काल तक परिभ्रमण करके पुनः संगी स्त्रीवेदी और नपुसक वेदियों 8-8 पूर्व कोटि और पुरुष वेदियों में 7 पूर्व कोटि काल तक रहकर तीन पल्ले की आयु के साथ उत्तम भोग भूमि में रहकर देव हो जाता है। इस प्रकार पंचेंद्रिय तिरियंचों में पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले काल प्राप्त हो जाता है। पंचेंद्रिय, हाँ, संगी ही होना चाहिए, असंगी भोग भूमि में नहीं जाएगा ना, असंगी देव में जा सकता है। पंचेंद्रिय पर्याप्त तिरियंचों में काल कहते समय ऊपर बीच में जो लब्धि अपर्याप्त भोग का ग्रहण कराया गया है उसे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पर्याप्तता के साथ लब्धि अपर्याप्तता का विरोध है। इसलिए संगी और असंगी जीवों में तीनों वेदों के साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है, बीच में एक बार अपर्याप्त में लिया था वैसा नहीं लेना है, इसलिए एक एक बार ही होगा, एक बार ही उत्पन्न करना चाहिए, और अंत के वेद में 8 पूर्व कोटि के स्थान में 7 पूर्व कोटि काल तक परिरोहण का विधान करना चाहिए। इस प्रकार करने से पर्याप्त पंचेंद्रिय तिरियंचों का काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले होता है। सबके लिए पृथक्त्व शब्द ही लगाया है, कहीं 95 पुरोकोटि होते, कहाँ 47 होते हैं। ये समय हो गया, अभी कल योनिमति की बात पढ़ेंगे हम, वो उसी में हो जाता है अंतर्भूत। एक ही लिया था ना उसका। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो रो।
Thank you.